قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل والعمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم أما بعد حضرت حکیم الامت کے عجل خلفوں میں بہت مشہور اور معروف حضرت خواجہ مذوب رحمت اللہ علیہ تھے. بہت ہی عجیب رنگ کے بزرگ تھے, حضرت کے خلیفہ تھے, جسم ہی رہتے تھے اور نام بھی مذوب تھا. بہت ہی عمدہ ان کے اشعار ہیں, شاعری کی, اور اپنے شیخ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے, بلکہ فنا شیخ تھے. ایک دفعہ میں بڑا عجیب سوال کیا حضرت سے, کہنے لگے حضرت نسبت بھی ہے اور ذکر بھی ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ گیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال تھا ماشاء اللہ. یہ تصور کی کچھ چند باتیں ہیں. بات بھی ایک عجیب سی ہے کہ بزرگوں سے سنتے تھے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ذکر کا مختلف رنگ ہوتا ہے اور مختلف مزہ ہوتا ہے. اس مسجد میں اکثر میرے ساتھ تو ایسے ہوا ہے کہ کوئی عجیب روحانیت ہے اس میں, کہ جب بھی کوئی بات نکلتی کوئی تصور کی عجیب قسم کی بات نکلتی. یہ بات تصور کی نکلتی ہے, نہ کوئی اخلاق کی نہ کسی قسم کی. عجیب روحانیت ہے اس مسجد میں, ذکر سے ہی پتہ لگتا ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات سے بھی حالانکہ مجموعہ بڑا نہیں ہوتا, پتہ نہیں آپ کو کیا کیفیت ہوتی ہوگی, لیکن مجھے دل کرتا ہے اپنے حضرت کی باتیں کروں, اللہ والوں کی باتیں کروں, پیار محبت کی باتیں ہوں, ڈانٹ ڈپٹی نہ ہو, ہر وقت دوزہ خوش جنتی نہ ہو. تو یہی پھر میرے دل میں پھر وہی بات آ گئی, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو دعا فرما اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے لیے مفید ہو. آپ سالکین ہیں الحمدللہ, یہ سوال کیا گیا ہے جو بالکل ہم پہ مثبت اور سبت ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو ہیں جمع ہوئے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ جمع ہوں, مجمع لگا ہے, جو بھی کہیں سن رہے ہیں عورت مرد اپنا وقت نکال کے بیچارے بیٹھے ہوں گے اپنی لگا کر مائک وغیرہ اور ذکر کے انتظار میں, عورتیں بھی مرد بھی بیچارے. مطلب ایک ہے اس چیز پہ جو ہمارے جمع ہونے کا, بیٹھنے کا, سننے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال میں وہی مطلب ہے کہ کیوں آئے ہیں آپ, میں گھر بار چھوڑ کے مسجدیں اور بھی تھیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کون چیز لے کر آئی ہے؟ تو ہمیں پتہ نہ ہو لاشعوری طور پہ سوال وہ جو انہوں نے کیا اس کے مطابق ہے کہ ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ ہمارے دل میں آ جائے. تو اسی محبت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, نہ کون لا سکتا ہے؟ کسی محبت کھینچ کے کون لا سکتی ہے؟ جب بھی انسان کو چلتا ہے کسی سفر کی طرف تو اس کے پیچھے جذبہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے. تو ہم بھی اسی قسم کے ہیں لوگ, بھی ہم بھی اللہ کی محبت ہی چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے یہ اللہ کی بتائے ہوئے راستہ اختیار کیا ہے, اللہ کا ذکر. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو, میں تمہیں مل جاؤں گا, تم سے محبت ہو جائے گی. تو انہوں نے بھی سوال ایسے کیا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ راستہ ایسے ہی نہیں بلکہ کیفیت ایسی ہے کہ عاشق اپنے معشوق سے کبھی مطمئن ہوتے ہی نہیں, हर कोई झटके में रहता है कि पता नहीं मुझसे राजी है भी या नहीं, मुझसे मोहब्बत करता भी या नहीं करता। और बात तो बात पूछते रहते हैं, डू यू लव मी, आर यू हैप्पी, इस किस्म के सवाल लोग करते रहते हैं बार बार। अब तुम मुझसे राजी हो, बेगम नाराज तो नहीं हो, बीवियों की तरफ ख्याल होगा, आप ठीक है ना, नाराज तो नहीं हुई ना। ये शक दिन में रह रहता है कि मेरा महबूब कहीं मैं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। और जिसका महबूब अल्लाह हो तो उसका क्या हाल होता होगा, उसका महबूब क्या हाल होता होगा जब एक ही गोश पोछ की औरत से महबूब बन जाए तो इंसान परेशान होता है। जब ये कैफियत पैदा होती है तो फिर ऐसे सवाल आते हैं, शायद आपके जहन में आता हूँ कि पता नहीं यार जा रहे हैं जिक्र में सबको बैठते हैं, अंदर अल्लाह आया भी है नहीं आया। अगर ये सवाल आने लगे ना समझ जाओ कि मियाँ फिर बात वही है कि महबूब असल महबूब बन गया, एतबार नहीं आ रहा कि मेरी मोहब्बत से हुई भी है नहीं अभी तक। ये बसवसा जो है बहुत से पीछे ले जाता है, लेकिन हकीकत में हजरत हकीम उम्मत ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। सवाल समझ गए आप, वक्त मुतसर है, मज़मून बहुत लंबा है, जल्दी आपको सामने मुख्तसर करके जामे करके पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। सवाल तो आसान है बिल्कुल, हज़रत महज़ूब जो उनके अज़ल खुल्फ़ा में सब दीवाने बस सवाल कर रहे हैं। जब देखें आप, जब हज़रत ख्वाजा महज़ूब जैसे आदमी कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल में आया नहीं आया, उनकी आप शरत फिर कितना साबित हो रहा है कि ये सही सब पक्के सच्चे आशिक की निशानी ये है कि मुतमईन नहीं होता कि मेरा माशूक मुझसे राजी है भी नहीं राजी। इसलिए हम फिर दिल में अगर ये ख्याल आता है ना कि यार पता नहीं अल्लाह राजी हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं हमारा जिक्र सही हो भी नहीं रहा हो रहा। सवाल जी फिर दोहराता हूँ आपके सामने, उन्होंने क्या सवाल किया कि हजरत अपने शेख से सवाल कर रहे हैं, बड़ी बात है अपने शेख के सामने ऐसी बात करना, ये बहुत जरूरत का काम है, बहुत जरूरत का काम है। और ऐसे बाअदब इंसान, इतने बुलंद इंसान जो तवक्का ही नहीं कह सकती कि, और फिर इतना सख्त आदमी के सामने, उनका मिजाज तो बहुत सख्त है ना, कि वो जानते हैं आप हकीम उम्मत का मिजाज तो फिर बहुत ही कड़क जवाब मिलते थे वहाँ से, तो कितनी दीवानगी होगी इस बात में मोहब्बत की मुझे पता है कि सब कुछ भूल गए ना, उन्होंने सवाल टिका ही दिया। नहीं समझे बात, मजा आ रहा ही नहीं आ रहा, अगर आशिक हो तो मज़ा आएगा आपको। तो वो कहने लगे जनाब सवाल फिर सुनाओ, हजरत नस्बत भी होगी, जिक्र भी हो रहा है, पता नहीं आता अल्लाह आया भी है दिल मेरे नहीं आया। जवाब उन्होंने कहा मियाँ जब तुम बालिग हुए थे, बालिग समझते हैं ना एडल्ट जवान, जब तुम बालिग हुए थे, अब ये कैसा शेख होगा और कैसा मुजीद होगा, तो तुम्हें पता चला था या तुम पूछते फिर रहे थे लोगों से कि मैं बालिग हो गया हूँ ये नहीं हुआ। कहते हैं लोगों से नहीं पूछा, मुझे खुद पता चला गया था। कहता है मामला ऐसा ही है, अगर नस्बत हो गई है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको पॉइंट आउट कर दूंगा बात, अगर नस्बत हो गई है और फैजान सोबत मौजूद है तो रूह बालिग हो चुकी होती है। वाह फिर क्या सवाल, क्या कितना कितनी खूबसूरत बात कि अगर ये चीज़ मौजूद है, नस्बत है और फैजान सोबत मौजूद है तो घबराते क्यों हो, रूह बालिग हो चुकी है, पूछने की क्या जरूरत है बालिग हुआ हो या नहीं हुआ। दिल में वो सोज और वो जज्बा, वो दर्द पैदा हो जाएगा, वो ऐसा दर्द पैदा हो जाएगा उससे, ऐसा सोज पैदा हो जाएगा कि उस दर्द से ना तुम घबराओगे चीखोगे बल्कि लोगों को चीखाते फिरोगे झागते। जहां जाते हैं हम तेरा किस्सा छेड़ देते हैं, जहाँ जाते हैं हम तेरा किस्सा छेड़ देते हैं। जब आशिक हो जाते हैं ना आदमी, जहाँ भी जाएगा अपने माशूक की बात करेगा, मेरे हजरत साहब जी, मेरे शेख जी, मेरा फलाना, उसको और कुछ चीज़ होगी ही नहीं। दीवानगी काल में ये हो जाता है कि चलते फिरते भी वही बात होती है, जहाँ जाते हैं हम तेरी मोहब्बत का किस्सा छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो, कोई महफिल तेरा रंग में महफिल देख लेते हैं, किसी जगह बैठो हमें नज़र अपने शेख ही आता है, इतनी मोहब्बत में इंसान दीवानगी बढ़ जाती है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता, कोई उस पर हदूद नहीं होती, कोई तकल्लुफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी दीवानगी गालिब आ जाती है मोहब्बत के इंसान पर। तो बालिग उसके बाद की बड़ी प्यारी मिसाल दे रहे, कहने लगे एक औरत थी, तो उसने अपने सास से कहा, बहू से, बहू ने अपने सास से कहा कि अम्मा जी मैं तो अब सोने लगी हूँ, और जब मेरे बच्चा हो जाए ना तो मुझे बता देना, ऐसा ना हो मैं सोती ही रह जाऊँ। सुभान अल्लाह, अजीब बात, किसना मिसाल दे रहे हैं सर। कहते औरत थी, बहू जिसको कहते हैं, अपनी सास से कह रही कि जब बच्चा हो जाए, मतलब प्रेग्नेंट होगी ना, कहते जब डिलीवरी हो जाए, यहाँ की जबान में बात करता हूँ, जब डिलीवरी हो जाए तो आप मुझे बता देना, मैं तो सोने जा रही हूँ, ये ना हो कि मैं सोती रहूँ बच्चा पैदा हो जाए। तो हजरत ये मिसाल दे रहे हैं कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल इसी किस्म की है। तो सास ने जवाब दिया, बेटा जब बच्चा पैदा होने का दर्द होगा ना तो तू भी जागेगी और सारे मोहल्ले को जगाएगी, दर्द ना तुझे सोने देगा और ना मोहल्ले को सोने देगा, ये दर्द तो ऐसा है। तो फरमाया इश्क जो दर्द है ना जो इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो फिर उसको आराम नहीं लेने देता, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती आदमी को, अल्लाह मेरे अंदर आया है नहीं आया, अल्लाह मेरे समाया है नहीं आया। शर्त वो आप दो चीज़ें बताइए, पहला सवाल क्या है, हाय हाय माशाल्लाह, नस्बत और फैजान ने सोहबत, ये सवाल था ना, ये दो चीज़ें मौजूद हैं, वरना ये नहीं फिर क्या होगा। वादे कि एक आदमी आया और कहने लगा हजरत दुआ फरमाने औलाद नरीना था फरमाया, तो औलाद भी नहीं, औलाद नरीना कहते हैं, नरीना समझते ना भाई लड़का होता कर, देगा लेकिन शादी आपने कब की, कहती शादी तो कोई नहीं की, दुआ कर अल्लाह औलाद था फरमाए। अब सुनिए ना कहते को, यानी कभी बगैर शादी औलाद हुई है किसी की, दुआ करा, कहते दुआ करो। तो जब नस्बत होगी, बगैर नस्बत के कहना कि हजरत अल्लाह की मोहब्बत और दर्द दिल में आया, तो वो ऐसे ही है कि अभी शादी की नहीं और औलाद की तमन्ना किए बैठे। इसके लिए लाजिम है कि नस्बत, और जब नस्बत हो तो उसके साथ क्या है, फैजान सोहबत हो, यानी शादी भी हो गई हो और शादी के बाद क्या हो, सोहबत भी हो बीवी के साथ। ये दो शरायत होंगी तो फिर आप कहेंगे मौलाना साहब दुआ कर दीजिए औलाद हो, तो फिर ही औलाद होगी ना, दुआ कभी जब भी कारामद होगी। तो इसलिए याद रखें कि अगर अल्लाह का मोहब्बत का दर्द और दिल में उतारना चाहते हैं, कि दो चीज़ें जरूरी हैं, नस्बत और फैजान सोहबत, जिस कदर ये मजबूत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुवी होंगी, उसी कदर अल्हम्दुलिल्लाह रूह बालिग होना शुरू हो जाएगी, रूह में बड़ोगत आना शुरू हो जाएगी और उसके रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर जब वो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अंदर वो दर्द पैदा हो जाएगा, ऐसा दर्द पैदा हो जाएगा कि बस ना खुद ने नींद, उसको नींद कहाँ पर उसको जाग, जिस वक्त दर्द पैदा हो जाए दर्द कहाँ सोने देता है, तो ना फिर खुद सोएगा ना दूसरे को सोने देगा। मेरे भाइयों हम सालकिन हैं, अल्लाह की मोहब्बत में हम जमा हैं, जिक्र तो एक रास्ता है, जिक्र मकसूद नहीं है, जिक्र क्या है, रास्ता है, ये एक रास्ता है जिसको हमने पकड़ा है, एक वसीला है, लेकिन मकसद हमारा क्या है, मकसूद क्या है, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। वो इंसानी नहीं, याद रखें वो हकीकत इंसानी जो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होकर दुनिया में रहे, वो इंसानी है, उसको तो मज़ा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि लुत्फ क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मज़ा क्या है, वो नहीं जानता। अगर कोई जानना चाहता है वाकई कि इस दुनिया और ज़िंदगी का मज़ा क्या है, इन सांसों के क्या लुत्फ है, क्या बहारें हैं इसकी, तो इस रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की मोहब्बत के हसूल हासिल करने की कोशिश करेगा, इसको पकड़ेगा, तो ज़िंदगी यही उसकी बहार बनना शुरू हो जाती है, मकसद मिल जाता है इसका। सुबह का भी पता है कि अब सुबह हो रही है, दोपहर का भी पता चलता है अब दोपहर है, शाम को भी पता चलता है अब शाम है, रात को भी पता चलता है अब रात है, शहर का भी पता चलता है शहर है। लेकिन अगर इश्क और मोहब्बत की तलाश नहीं अल्लाह की, तो फिर उसको यही नहीं पता चलता सुबह कब हो रही है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, वो एक ही मकसूद उसका हो जाता है, और वो क्या है, ये बस यार खाओ पियो और सो जाओ, बस किस्से खत्म, शादी करो औलाद पैदा करो बस सो जाओ, कोई मकसद ज़िंदगी उसका नहीं रहता, बेमज़ा ज़िंदगी इंसान गुजारता है। तो मेरे भाई अल्लाह ने इस तरफ हमें शौक़ दिया है, इसमें घबराने की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़े हौसले की बात है। बड़े बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं कि यार इतने अरसा हो गया, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, शेख का हाथ भी पकड़ा है, हम तो सोचते थे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, तो यहाँ हजरत हकीमुल उम्मत ने वादा, बिल्कुल वादा खोल दिया कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि ये जनाब नस्बत भी हो और फैजान सोबत भी हो, तो फिर रूह तेरी बालिग ना और जर ना निकले। बिल्कुल हिम्मत ना हारे अल्हम्दुलिल्लाह। कच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, बस सबसे बड़ा काम जो था कि हमने किसी अल्लाह वाले की नस्बत को अख्तियार कर लिया, सबसे बड़ा काम ये बैरियर जो तय करना जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े लोग इसमें फेल हो गए, बड़े बड़े मुहद्दसीन और बलागत रखने वाले, इंटेलेक्चुअल दिमागों को रखने वाले इस मुकाम पे फेल हो गए हैं, वो भर के किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी अल्लाह वाले का स्टार्ट नहीं किया सफर। अब वो खुद ही अपने मस्त रहे, जी हमें क्या जरूरत है, हम तो कर सकते हैं जी, हमें क्या पता, हम तो जी फना है। कभी ये सफर, मेरे हजरत फरमाते थे कि याद रखो ये सफर इतना 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 सेंसिटिव है, खतरनाक तो नहीं कहूँगा, सेंसिटिव है, इन हसास सफर है अल्लाह तक पहुंचने का, कि तुम कभी भी ये सोच ही नहीं सकते कि नफ्स और शैतान तुम्हें रास्ते में भटकाना थे, सोच ही नहीं सकते। इमाम राजी कितना बड़ा मशहूर है वाकया, सुना है बुजुर्गों से अल्हम्दुलिल्लाह। किसी शेख के पास गए थे तो उन्होंने जब उनको बताया कि भाई ऐसा मामला है, तुम ऐसा करो, कहते ये तो बड़ा अजीब सा लगता है हजरत, तुम अजीब सा लगता, भेज जाओ ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि तुम इतने दिन मेरे पास ठहरे हो तो इसका भी असर तुम पे जरूर होगा। तुम अगर शेख नहीं पकड़े तो, लेकिन यह बात रखना कि तुम इस नेत से अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा था, लेकिन इसका असर भी जो है तुम पर जरूर बजरूर होगा। जिस वक्त तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे आवाज जरूर दे देना। शेख ने कहा, खालिम शाह ने मुफ्ती तकी साहब से सुना था वाकई, या कोई और बुजुर्ग थे, उन्हीं की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये मैंने खुद तो पढ़ा नहीं। कहना आवाज़ ज़रूर दे देना, क्योंकि अगर बिल्कुल ही तुम इस तरफ ना चलते ना थे, तुम्हारा मेरे पास पहुँच जाना, सवाल करना और ख्वाहिश जाहिर करना, लेकिन फिर हेजिटेशन हो गया, तुम्हें रुकावट आ गई अपने वसावत से, तुम कहते जी ये तो ज़रा मुश्किल है, और वो इलम हारे आया, हाइल हुआ आपके, हालांकि वो भी आलिम थे, तो तुम यहाँ झटक गए, भटक गए, तो लेकिन तुम आ चुके हो यहाँ तक, इसका भी असरात जरूर होते हैं अल्लाह वाले के तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक। और कभी होगा तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे आवाज़ ज़रूर मार देना। इमाम राजी का वक्त आ गया, कितने बड़े इमाम थे आप देखें, साफ़ी तफसीर कुरान की सब जानते थे। अब जो उनका वक्त आया, ये बहुत बड़ा इंसान बात सुना रहे आप, ठीक है मैं हवाला दे रहा हूँ, तकी थे, जब उनका वक्त आया आखिरी, शैतान रवायत मौजूद है ये कि शैतान मरते वक्त इंसान के पास आता है, उसकी दुआएं भी मासूरा मौजूद हैं, अल्लाह मुझे तखब्बत शैतान अंदर मौत, ये बड़ी मशहूर दुआ है, पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला मौत के वक्त शैतान हमें खब्त कर दे, उससे हमें बचाना, उसके हमले होते हैं आगे बैठ जाते हैं किनारे पर। और मैंने देखा है बहुत से लोगों को उस हालत के अंदर, कहते हैं आज तो मुझे बैठा है, ये मुझे तंग कर रहा है, बड़ी बसूस शक्ल मुझे कह रहा है तू क्या होते हो, ये मैंने खुद सुनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आके बैठ जाएगा, ये दुनिया नहीं रहती इस वक्त मेरे भाइयों, हाँ उस वक्त तो फिर वही चीज़ होती है जिसकी हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की होती है, उस वक्त भी वो साथ होता है, याद रखना बात। उस वक्त पता चलता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह टूटे फूटे हम बैठते तो रहे ना जिक्र में, अल्लाह का नाम लेते तो रहे ना, किसी अल्लाह के अल्लाह वाले के पास जाते तो रहे ना, और वो भी इस तरह के अल्लाह ने खुद हमें कहा था, हमने काम किया तो सही था ना, उस वक्त जाके पता चलता है ये चीज़ें काम आती हैं। अब इमाम रज़ा जी कितने बड़े इमाम थे, तो उसने शैतान ने, वो तो बहुत बड़ा आलिम है आप जानते हैं यार, बहुत ही बड़ा आलिम है, वो तो छोटा छोटा मोटा आलिम थोड़ी है, आबिद भी है, तो बहुत बड़ा आबिद भी है, इबादत गुजार है वो, तो उसने बड़े बड़े खेल खेले, तो आ गए ये इमाम गजाले को तो फारिग करूँ ना मैं। उसने जना पूछा कि तू खुदा को कैसे मानता है, है ही नहीं खुदा, पागल लगा रहा तो अपनी ज़िंदगी पर बात करता रहे, तफसीर लिखता रहे, लोगों को कहता रहे। मैं तो मानता हूँ कि दलील, अब उन दलील दी, वो दलील दे खट मारे शैतान, अब वक्त नज़दीक आता जा रहा है और वो दलील मारता है, हाथ पाँव ठंडे हो गए बेचारा। हजरत बताते हैं कि जब उनके हाथ पाँव ठंडे हो गए और वो हिम्मत हार गए, इमाम गजाली की बात कर रहा हूँ दोस्त, हम तुम तो क्या है, जो हिम्मत हार गए शैतान ने कहा मैं तो जीत गया। तो फिर उन्हें एक बात आई याद अपने शेख, किसी को शेख भी नहीं बनाया था, उन्होंने कहा था कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज मार लेना। तो उन्होंने लेटे लेटे कहा कि हजरत बहुत सख्त परेशानी है, मेरे दलाल खत्म हो गए, कोई मदद कर सकते तो करते। फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत वजू फरमा रहे थे, लोटा उनके हाथ में था, तो उन्होंने उस लोटे को जोर से मारा और कहने लगे तू घबरा मत, शैतान मलून को तो पहले वो लोटे ही पड़ा ना अच्छा खासा हजरत का। तो कहते हैं कि इसको जवाब दे, कि दलील मांगते हैं ना, मैं तुझे दलील देता हूँ। कहते हैं उसको बोल कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ। सुभान अल्लाह। और जैसे ही शेख ने कहा उनके मुंह से एकदम निकला कि भाई तू दलील मांगता है, मैं तो अल्लाह को बगैर दलील के मांगता हूँ। उसने पढ़ा तू जीत गया मैं हार गया, और कलमा पढ़ा शहादत का, दुनिया में चले गए। तो ये है बात सुनी, ये नस्बत जब तक नहीं होगी आप, और यहां रुकता है शैतान। जिसने ये बैरियर तब्दील हासिल कर लिया कि उसने किसी अल्लाह वाले के पास हाथ पकड़ लिया, सब नफ्स को गिराता हो कि भाई कुछ भी नहीं है, उस्ताद रखना ही पड़ेगा, मुझे गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी, मुझे सफर को करना ही पड़ेगा, जब तक मैं किसी को साथ नहीं लेके चलूंगा मेरा काम नहीं बनेगा। जब ये बैरियर उसने तय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। इस पर हकीमत उम्र कहते हैं कि जब निस्बत भी हो और फैजान है सोबत भी हो तो फिर घबराने की क्या बात है, फिर तो रिजल्ट निकलना ही निकलना है। शादी हो गई और सोबत भी हो गई बीवी से, अब तो बच्चा होना ही होना है, अब तो इसमें कोई रुकावट है ही नहीं, अल्लाह फजल फरमाएंगे। इसलिए हर साल को फिक्र नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से टूटे फूटे जैसे भी हैं, गुनाह हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, होना तो सफर तो ऐसे ही है, लेकिन नस्बत अगर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इखलास रखते हैं, अपने शेख से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन जी कहते हैं कि घबराने की बात नहीं, इंशाल्लाह इस सफर को इंसान तय कर ही लेते हैं। तो मेरे भाई हम सभी इसी आसरे पर बैठे हैं, सब मुसाफिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी रास्ते को पकड़ा हुआ है कि भाई अल्लाह का नाम लें, और जो नस्बत हमारी रखी गई है उस नस्बत को मजबूती से पकड़ें, ताकि अल्लाह पाक हमारे आने वाले मंजिलों को आसान फरमाए। बाकी अगर कोई समझता है कि हम तो यहाँ बुजुर्गी लेने आए, कोई खिलाफत लेने आए, कोई जनाब अब कोई हमें अहवाल होनी चाहिए और कोई फरिश्ते नज़र आने चाहिए और हमें परी भी नज़र आएँ और जन्नात भी नज़र आएँ, हम बहुत मशहूर हो जाएँ, फिर सब कहें अल्लाह वाला जा रहा है और जनाब धूम लगी हो पीछे और हमारे पीछे मुरीदीन हो, और हम ये ऐसे भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। तो मेरे भाई हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ, फिर किसी और के पास चले जाओ। मैं तो अल्लाह वाला भी नहीं हूँ ना, मैं साहिब कश बुजुर्ग हूँ, मैं तो बहुत टूटा फूटा इंसान हूँ, मैं तो आलिम भी नहीं हूँ। तो फिर आप मेहरबानी करें किसी और के पास चले जाए। हाँ, अगर अल्लाह को पाना है तो इस फकीर की टूटी फूटी झोली को पकड़ लें, इंशाल्लाह जरूर पहुँच जाए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए।